रविवार 5 जुलाई दिनभर के साथ मैं निखिल रंजन। ग्रीस में यूरोपीय देशों के प्रस्ताव पर अपनी राय बता रहे हैं लोग, भारी संख्या में मतदान की खबर। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच से जुड़े एक और शख्स की मौत, कांग्रेस ने पूछा सवाल।
क्यों सुप्रीम कोर्ट जज मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी गुरेज कर रही है।
जोर शोर से लॉन्च हुए डिजिटल इंडिया अभियान से क्या हासिल होगा भारत के लोगों को, संडे दिन भर की खास मुलाकात में बताएंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद।
हर महीने हम 5 से 7 मिलियन यानी 50 से 60 लाख मोबाइल फोन जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि शासन हथेली पे होना चाहिए।
खबरें होंगी और भी, लेकिन सबसे पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। ग्रीस में बेलआउट पैकेज को स्वीकार करने या ठुकराने के सवाल पर जनमत संग्रह के लिए बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है। जनमत संग्रह को लेकर हुए पोल में लगाए जा रहे अनुमान के मुताबिक सालों से खर्च की कटौती का सामना कर रहे ग्रीस के लोग बेलआउट पैकेज के पक्ष और विपक्ष में लगभग बराबर वोट डाल रहे हैं। कड़ी पाबंदी के बावजूद कुछ बैंकों में धन लगभग खत्म होने के कगार पर है। ग्रीस की वामपंथी सरकार बेलआउट में वित्तीय अनुशासन की शर्तों को बेहद कड़ा मानती है, जबकि यूरोपीय संघ उनमें रियायत देने को राजी नहीं है। ट्यूनिशिया की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। पिछले हफ्ते टूरिस्ट रिजॉर्ट में चरमपंथी हमलावर की गोलीबारी में 38 लोगों की मौत हो गई थी। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कायद एसएबसी ने कहा है कि ये देश में मौजूदा सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक संकटों की वजह से कदम उठाना पड़ा है। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कायद एसएबसी ने कहा,
हमारे अंदर असुरक्षा की भावना नहीं है, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम एक स्थायी खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे जो हमें परिणाम की ओर ले जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं, हम युद्ध की स्थिति में हैं और इसका सामना करना है जैसे हम युद्ध का सामना करते हैं। ये थे ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी कायद एसएबसी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया में पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पूर्वी शहर पोस्टिसकम में एक चर्च पर हुए आत्मघाती हमले में तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई है। योबी राज्य के शहर पोस्टिसकम में एक इवांजेलिकल चर्च में मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि मरने वालों में चर्च का पादरी भी शामिल है। चरमपंथी संगठन बोको हराम के पिछले हफ्ते के हमलों में करीब 200 लोगों की मौत हो गई है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने पद संभालते बोको हराम से कड़ाई से निपटने की बात कही थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के साथ संघर्ष में 30 पुलिसकर्मियों की मौत के मामले में जांच का आदेश दिया है। कुछ राजनेताओं और मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अल्पसंख्यक हजारा जाति के इन लोगों की मदद के लिए इंतजाम नहीं किए थे। कुछ शवों के सिर काट दिए गए थे। काबुल में विरोध प्रदर्शन भी इसके खिलाफ हुए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इन हत्याओं को युद्ध अपराध करार दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मंगलवार तक समझौते तक पहुंचने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जरीफ से वियना में मुलाकात कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और संभवतः रूस और चीन भी सोमवार को समझौते पर बातचीत के लिए लौट सकते हैं। बातचीत में ईरान के आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देकर उसके परमाणु कार्यक्रम पर कुछ रोक लगाने के लिए समझौते तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। आज रविवार है, लेकिन जैसा कि आपने खबरों में सुना, ग्रीस के लोग आराम करने या छुट्टी मनाने की बजाय जनमत संग्रह में अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। ये रायशुमारी इस बात पर है कि ग्रीस को यूरोपीय संघ से मिलने वाले बेलआउट पैकेज के लिए रखी गई शर्तों के साथ प्रस्ताव को मान लेना चाहिए या नहीं। प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिपरास जब वोट देने आए तो कहा कि कोई भी लोगों की इच्छा को नकार नहीं सकता। वामपंथी सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो यूरोजोन के प्रस्ताव को नकार दें। ग्रीस की जनता बड़ी संख्या में वोट दे रही है, लेकिन ग्रीस पर नजर रख रहे लोगों का कहना है कि मुकाबला बराबरी का है और नतीजों में फर्क 19-20 का ही रहने की उम्मीद है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ संदीप सोनी।
ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने भरोसा जताया है कि लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया होगा। जनमत संग्रह में ग्रीस के लगभग 1 करोड़ मतदाताओं से एक सवाल पर अपना जवाब हाँ या ना में देने के लिए कहा गया था। जनमत संग्रह में उनसे पूछा गया था, क्या आप हमारे कर्जदाताओं की शर्तों को मंजूर करते हैं? ग्रीस में इस समय सिरिजा पार्टी की सरकार है, जिसने कर्जदाताओं की शर्तों को नामंजूर करने का आह्वान किया था। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास का कहना है,
ग्रीस के लोगों ने आज बड़ा सख्त संदेश दिया है। ये मान सम्मान से जुड़ी बात है। संदेश साफ है कि पसंद हमारे अपने हाथ में है। आप एक सरकार की इच्छा की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र की मर्जी को कोई अनसुना नहीं कर सकता।
ये थे ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के शब्द। जनमत संग्रह में कर्जदाताओं की शर्तों को मंजूर करने या न करने के सवाल पर मतदाताओं ने मिली जुली राय दी है। स्थानीय महिला मारिया मार्कोव का कहना है कि ग्रीस इतना आर्थिक बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए वे नहीं चाहती कि कर्जदाताओं की शर्तों को मंजूर किया जाए।
मुझे लगता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब ग्रीस के लोग खर्चों में कटौती के बारे में खुद तय कर रहे हैं, वरना अभी तक इसे हम पर थोपा जा रहा था। हम शर्तों को मंजूर नहीं कर सकते हैं।
एक अन्य व्यक्ति वास्किव पपकोस्तास का कहना था,
मैंने शर्तों को मंजूर करने के लिए हाँ कहा है। क्यों हाँ कहा है, ये सवाल पूछना सही नहीं है, क्योंकि मैंने खर्चों में कटौती को ध्यान में रखकर वोट नहीं दिया है, बल्कि इसकी वजह यह है कि मैं इस सरकार से निराश हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतना अच्छा है।
वोट देने के बाद एक अन्य महिला ने कहा,
मेरा वोट नो था, क्योंकि युवा होने के नाते मेरा मानना है कि हम इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं। गरीबी से बचने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए।
ग्रीस के मतदाताओं की अलग अलग राय है, लेकिन ग्रीस को उधार देने वाले देशों का कहना है कि अगर उसने बेलआउट की शर्तों के खिलाफ वोट किया तो इससे उसे मिलने वाली मदद रुक सकती है। ग्रीस की सरकार को कुल 3.40 अरब यूरो की उधारी चुकानी है। ग्रीस ने जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों से उधार लिया है। उधार देने वालों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी शामिल है। बीबीसी के आर्थिक मामलों के संपादक रॉबर्ट पेस्टन का कहना है कि ग्रीस का हर नागरिक इस समय थोड़ा विचलित है, क्योंकि ग्रीस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब जाएगी या संकट से उबर आएगी, इसका फैसला जनमत संग्रह के नतीजे ही करेंगे।
जनमत संग्रह के नतीजे जैसे जैसे आने लगेंगे हम आपको बताते रहेंगे। और ये पूरा ब्यौरा सुना रहे थे संदीप सोनी। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर, और आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। और अब रुख करते हैं भारत का। मध्य प्रदेश के व्यापमम घोटाले में लगातार हो रही संदिग्ध मौतों में आज एक और नाम जुड़ गया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा की मौत हो गई है। उनका शव दिल्ली के एक होटल से मिला। वो दूसरे डीन हैं जिनकी इस मामले में मौत हुई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला,
पर जिस प्रकार से आर्या जी की रहस्यमय परिस्थिति में पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में मौत हुई, नरेंद्र तोमर जो एक और व्यापम से जुड़े व्यक्ति थे उनकी मौत हुई, डी के सकाले जी की मौत हुई, अक्षय सिंह जी की मौत हुई और डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत हुई, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और सिलसिलेवार मौतें ये दर्शाती हैं कि दाल में काला कुछ अवश्य है और इसकी जांच होनी चाहिए।
एक दिन पहले इस मामले में खबर करने गए दिल्ली के एक पत्रकार की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपने की बात कही है।
उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी है और दुखी परिवार के साथ मैं स्वयं राज्य सरकार खड़ी हुई है। कल उनका पोस्टमार्टम गुजरात के दाहोद के जिला अस्पताल में हुआ और एक डॉक्टर ने नहीं किया, डॉक्टर के पैनल ने किया, डॉक्टरों की टीम ने किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है, अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, जो तथ्य है वो आपके सामने है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य और कारण होंगे वो सामने आएंगे। आज मैं एसआईटी को पत्र लिख रहा हूं। एसआईटी जिसका गठन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त जो जो जज थे उनकी अध्यक्षता में माननीय हाई कोर्ट ने किया और उनसे हम आग्रह कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के मामले में इंडिया टुडे ग्रुप ने एक बयान जारी कर उनके विसरा की जांच किसी मान्यता प्राप्त फॉरेंसिक प्रयोगशाला में करवाने की मांग की है। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी विकल्प दिया गया है। अक्षय सिंह का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार कर दिया गया। निगम बोध घाट पर हुए अक्षय के अंतिम संस्कार के वक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता अजय माकन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेता और पत्रकार मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से ये साफ करने की कोशिश की है कि उनकी सरकार इस घोटाले को लेकर गंभीर और चौकस है। उन्होंने कहा,
एसटीएफ को हमने दिया मामला, एसटीएफ ने जांच शुरू की, जांच करके कई गिरफ्तारियां हुई, हाईकोर्ट ने तो उसके बाद में इस मामले को जब लोग हाईकोर्ट में गए तब अपनी मॉनिटरिंग में लिया, जब हाईकोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग में लिया तो फिर राज्य सरकार का जांच से संबंध, क्योंकि हाईकोर्ट खुद अपनी मॉनिटरिंग में जांच कर रहा था, तो जांच से संबंध फिर समाप्त हो गया और हाईकोर्ट खुद अपनी मॉनिटरिंग में उस जांच को कर रहा है, लेकिन शुरुआत में जितनी कार्रवाई से राज्य शासन ने की।
मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि आखिर सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रही।
एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, एक अक्षय सिंह नहीं, एक अरुण शर्मा नहीं, 45 मौत सामने हैं जनता के। क्या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, अगर उनके मन में कोई शक सुबह नहीं है, कोई शंका नहीं है, अगर मध्य प्रदेश सरकार और शासन के पास छुपाने लायक कुछ नहीं है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट जज मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी गुरेज कर रही है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे इससे अगला कदम उठाने से पहले।
उधर मध्य प्रदेश की सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि हाई कोर्ट के जब निर्देशों के मुताबिक जांच हो रही है तो वो उसमें दखल नहीं देगी। ये बीबीसी रेडियो है, आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। भारत में इस बार के सिविल सर्विस परीक्षा के नतीजों ने पूरे देश को गौरव का एहसास कराया है। हालत यह है कि पुरुषों की कतार पांचवें नंबर से शुरू हो रही है, शीर्ष चार स्थानों पर महिलाओं का कब्जा है। शीर्ष नंबर पर आने वाली इरा सिंघल से जब बीबीसी ने बातचीत की तो उन्होंने इस कामयाबी पर खुशी तो जताई लेकिन साथ ही अपनी तकलीफों का भी एहसास कराया जो उन्हें अपने सफर में झेलनी पड़ी।
बहुत सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट कुछ टीचर्स ऐसे भी होते थे जिन्हें लगता था कि लड़कियों को ये सब नहीं करना होता है, लड़के ही सिर्फ अच्छा काम कर सकते हैं और लड़के ही सिर्फ आगे कुछ करेंगे, लड़कियों को तो बस शादी करके घर संभालना होता है या लड़कियां तो दूसरे घर में जाएंगी तो उन्हें तो सिर्फ उसी तरह से जीना चाहिए कि वो सब दूसरों की बात सुनती रहें और अपना कोई उनकी ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, अपने कोई शब्द नहीं होने चाहिए। और ऐसी मुझे प्रॉब्लम्स बहुत लेवल से आई हैं, बहुत बार आई हैं, क्योंकि एक लड़की ही नहीं, एक डिसेबल लड़की होने के खातिर तो लोग मेरे से पूरी तरह यही चाहते हैं कि मैं सिर्फ चुप सुनती रहूं और अगर मैं कुछ बोलना चाहूं तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है मेरी बात।
अब शायद इरा सिंघल की आवाज़ कोई और नहीं दबा पाएगा और ये पूरी बातचीत और कुछ और आईएएस में सफल हुए, परीक्षा में सफल हुए कुछ लोगों से आपकी बातचीत हम कराएंगे दूसरे कार्यक्रम हमारे घटना चक्र में थोड़ी देर बाद। फिलहाल वक्त है संडे दिन भर का। इस हफ्ते प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का उद्घाटन किया। इस मुहिम के तहत वो देश के हर नागरिक को सरकार की सुविधाएं देना चाहते हैं। अगर ये सफल रहा तो देश और समाज का चेहरा बदल सकता है लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं, कई मुश्किलें हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथी जुबैर अहमद संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिले और पूछा कि आम आदमी के जीवन पर डिजिटल इंडिया से क्या फर्क पड़ेगा।
देखिए, हिंदुस्तान के लोग टेक्नोलॉजी को पहले ऑब्जर्व करते हैं और बाद में उसको अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। इस देश में लगभग 98 करोड़ मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, 97.5 करोड़ हैं। हर महीने हम 5 से 7 मिलियन यानी 50 से 60 लाख मोबाइल फ़ोन जोड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि शासन हथेली पे होना चाहिए। अब आप देखिए कि आज ही मैंने डिजिटल इंडिया वीक में एक उद्घाटन किया बीएसएनएल का, स्पीड पेमेंट, और आंध्रा बैंक से अपने को कोऑर्डिनेट किया है, उसके 6 लाख रिप्रेजेंटेटिव पूरे भारतवर्ष में हैं। तो कोई अगर बिहार यूपी का आदमी काम करता है मुंबई केरला में, तो उसके माध्यम से अपनी गरीब माँ को पैसे भेज सकता है। कहने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जब भी आएगी तो उसके 3 परिणाम होंगे। नंबर 1, देश में सुशासन बढ़ेगा। नंबर 2, लोग साक्षर और मजबूत होंगे। अब जैसे कैसे हम कर रहे हैं आपको बताना चाहते हैं। 82 करोड़ आधार कार्ड की सीडिंग हो गई। हमने गरीबों का अकाउंट जनधन के अंतर्गत खोला तो 4 महीने में 16 करोड़ अकाउंट खोल दिया मोबाइल के माध्यम से। अब आप देखें कि गैस की सब्सिडी जाती है सिलेंडर में, वो सीधा पहुंचती है लोगों के अपने अकाउंट में, तो जीवन सुलभ होता है, भ्रष्टाचार समाप्त होता है। हम पूरा डिजिटाइजेशन वही कर रहे हैं कि देश भर में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं।
आपने मोबाइल फ़ोन की बात की कि 97 करोड़ 98 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हैं, तो इस योजना के अंतर्गत ऐसी सरकार की मंशा है कि सभी के पास मोबाइल फ़ोन हो, जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हथेली पे।
बिल्कुल सारी। तो BSNL ने कार्यक्रम बनाया कि सारे लगभग 54,000 जगहों पर गांव में नहीं है मोबाइल, उसको हम जाएंगे करेंगे। जो आपके नॉर्थ ईस्ट है उसको हम कवर करेंगे, 5,000 करोड़ की वो योजना हुई है। और माओवादी क्षेत्र हैं उसके लिए अलग से योजना हुई है अधिक टावर लगाने की, तो ये तो हम कर रहे हैं।
तो हैंडसेट भी प्रोवाइड करेगी सरकार?
नहीं, लोग हैंडसेट नहीं लेते, चिंता मत करिए। उसके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं बड़ी संख्या में। अब 98 करोड़ मोबाइल है, बनते बहुत कम हैं, तो यहाँ बनने चाहिए, उसको इंसेंटिव दिया है। और देश में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का जाल बिछा रहे हैं, तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल साक्षरता, मोबाइल फ़ोन, इन सबों के माध्यम से हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, तो देश आगे बढ़ेगा। तो आपने कहा क्या बदलाव होगा। अब आज ये चर्चा कम होती है कि 40% रेलवे की टिकट ई टिकटिंग और छोटे शहरों से है। मैं BBC के माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जब मैं मंत्री बना तो मैं देश के IT ज्योग्राफी को देखने की कोशिश की, तो बड़ा संकुचित है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर, बैंगलोर, शायद विशाखापत्तनम, दैट्स ऑल। तो हमने वहाँ से BP योजना शुरू की छोटे शहरों में, कि 48,000 सीट हमने सेलेक्ट की है जिसको राज्यों में बांटा है उनके जनसंख्या के अनुसार।
उनको ट्रेनिंग भी आप दे?
हाँ, नहीं, इसको थोड़ा मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप हिंदुस्तान के गाँव में सुने जाते हैं, मुझे बताने दीजिए। तो UP में 8,000 मतलब 80 सीट, एक सीट पर 100 लोग। बिहार में 4,400 सीट में 44 जगह। तो एक स्थाई वेल नोन कंपनी होगी, वो लोकल एक उद्यमी से हैंड होल्डिंग करेगी। हम 1 लाख पर सीट देंगे वहाँ पर सब्सिडी। तो मेरी कल्पना है कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, बलिया, जबलपुर, उदयपुर, जोधपुर, ऐसे छोटी छोटी जगहों पर BPO खुलना चाहिए। तो उससे देश में डिजिटल इंक्लूजन होगा। हमारे पोस्टल के लगभग 1,25,000 गाँव के पोस्ट ऑफिस हैं, उनको हम डिजिटाइज कर रहे हैं हैंड होल्डिंग डिवाइस के द्वारा। और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर चलते हैं लगभग 1 लाख, जो महिलाएं काफ़ी चलाती हैं, 2 को उस दिन प्रधानमंत्री ने पुरस्कार भी दिया था, उनको एम्पावर करना। तो इसके माध्यम से पूरे देश का हम ढांचा बदल रहे हैं।
3-4 साल 5 साल में जब पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, आपकी योजना, तो जिस तरह की आपने कल्पना की है, उससे क्या, उसका उद्देश्य क्या होगा फिर? क्या
उद्देश्य? 2-3 होगा। भ्रष्टाचार की समाप्ति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब आप गांव में बैठे हुए हैं, आपको अप्लाई करना है, आपका एप्लीकेशन वहाँ जाएगा। अभी मैं अपोलो के साथ एक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, ई हेल्थ। मैं चाहता हूँ कि आपके श्रोताओं को 2 चीज़ें बताऊँ। बिहार यूपी के लोगों को एम्स में आके इलाज करने का दबाव पड़ता है, तो यहाँ आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर उनको डेट मिलती है। तो हमने कहा टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका रास्ता निकालो। तो हमने एक IT विभाग ने एक ऐप बनाया है, उसको एम्स में, सफदरजंग में 2-3 जगह इंस्टॉल किए हैं, कि आप बिहार के गांव से, यूपी के गांव से, MP के गांव से बटन दबाकर अपने को बुक करा सकते हैं, और आपको डेट मिल जाएगी 1.5-2 महीने की। आप आइए, दिखाइए, दिखा के जाइए। तो देखिए टेक्नोलॉजी किस तरह सुलभ करती है।
ई कॉमर्स की आपने बात की, तो कुछ ऐसी मूवमेंट बिट्स एंड पीसेस में देश भर में हुई हैं, जो जैसे कि ई चौपाल ITC ने शुरू किया था विदर्भ में, नेस्ले वालों ने भी किया था। तो क्या इन सब जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, मछुआरों को भी किया गया, तो इनको इंटीग्रेट किया गया है डिजिटल?
देखिए, इसीलिए हम उसका एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। दुनिया की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, हम देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए जिन्होंने भी छोटा काम किया वो सराहनीय है, लेकिन इतने बड़े देश में टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा, इसको एक बड़े आकृति में लाना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया उसी को कर रहा है, और एक बार हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देंगे तो जो चाहे वो सेवा दे, अच्छी बात है, स्वागत है सबों का। मैं चाहूँगा ITC हो या नेस्ले हो, वो एक साथ 10,000 गाँव लें कि हम इसके माध्यम से उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छी बात है।
ब्रॉडबैंड हाईवे की आपने बात की, 2011 में इसकी शुरुआत हुई, और अभी तक ऐसा जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 2-3 साल पीछे चल रहा है, तो इसको आगे बढ़ाने, स्पीड अप करने के आपके पास कौन से तरीके?
देखिए, नोफन योजना 2011 में शुरू हुई थी। हमारी सरकार में और पिछली सरकार में क्या अंतर है कि पिछली सरकार ने 2011 में शुरू होने के बाद 258 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ले किया था, हमने एक साल में 47,000 किलोमीटर ले किया, तो 300% से भी ज़्यादा इसको बढ़ाया। लेकिन इसमें कुछ आर्किटेक्चरल कमियाँ थी, इसलिए हाई पावर कमेटी बनी, प्रधानमंत्री ने बनाया, और उसके बाद निष्कर्ष निकला कि राज्य सरकारों की और भूमिका होनी चाहिए राइट ऑफ वे के बारे में, बाकी के बारे में। तो हमने उसके लिए IT मंत्रियों की बैठक बुलाई। आज आपको सुनकर खुशी होगी कि 10 राज्य लिखित रूप से तैयार हैं कि इसमें हम स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ काम करेंगे। तो ठीक है, आपने कहा उसको हम स्पीड अप करेंगे और हम लक्ष्य को समय के अनुसार पूरा कर लेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास।
दिसंबर 2016 तक जो लक्ष्य है, ये
हमें लगता है कि एक बार राज्य सरकारें पूरी सक्रियता से लग जाएंगी तो एक काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।
तारों का जाल बिछाना चाह रहे हैं हम गांव-गांव तक, क्या इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में इसकी वाकई ज़रूरत है, या फिर
देखिए 3G नेटवर्क या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज भी दुनिया में फाइबर सबसे प्रभावी होता है। इतने पहाड़ हैं, बाकी जो बिल्कुल इनएक्सेसिबल एरिया हैं वहाँ आप सेटेलाइट टेक्नोलॉजी से जा सकते हैं, लेकिन भारत के घर घर में, गांव-गांव में सेटेलाइट टेक्नोलॉजी की सीमाएँ होती हैं। तो हम ऑप्टिकल लगा रहे हैं, बाकी प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे, जहाँ कुछ और ज़रूरत होगी और टेक्नोलॉजी की वो भी हम करेंगे, लेकिन विकास के लिए ऑप्टिकली कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि 3G का भी जाल यहाँ फैला हुआ है और 4G भी आने वाला है, तो उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से सरकार करती तो शायद ये जल्दी भी हो जाता, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता।
देखिए, कुछ लोग तो हमेशा निगेटिव ही बोलते हैं, सरकार ने इसका पूरा विचार किया है। जैसे आप नेशनल हाईवे बनाते हैं उसी तरह इंफॉर्मेशन हाईवे के लिए ऑप्टिकल फाइबर जरूरी है। अब उसको नए तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका हुई, ये हम लोग की पूरी कोशिश है।
दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई 3G होते हुए भी लाइन ड्रॉप हो जाती है, लाइन ये जो टेली कम्युनिकेशंस कंपनियाँ हैं वो बहुत स्ट्रेस में है, कस्टमर ज़्यादा हैं उनके पास, जो है विदऑल कम है, तो ये आम जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पा रही।
देखिए, मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहली बात है कि जहाँ टेलीकॉम कंपनी ने अच्छा काम किया है देश में विस्तार में, वहाँ इस तरह के बिना मतलब के बहानेबाजी नहीं चलेगी। उनको स्पेक्ट्रम चाहिए था, हमने स्पेक्ट्रम दे दिया, ईमानदार ऑक्शन हुआ, आपने देखा 1,10,000 करोड़ की राशि आई। भारत एक इतना बड़ा केंद्र है ना व्यापार का, 125 करोड़ लोग हैं, तो भारत व्यापार का केंद्र है ना, अच्छी सेवा उनको देना चाहिए, ये उनके हित में है और जनता के लिए भी ज़रूरी है। तो अच्छी सेवा लेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूँ, हमेशा इन लोग की तिमाही प्रॉफिट लॉस का अकाउंट्स आता है, तो सब तो प्रॉफिट में है कि नहीं, सबका दुनिया का व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अच्छी सेवा देने की बात जब मैं कहता हूँ तभी ये सारे आरोप क्यों हो जाते हैं।
लेकिन ये सनशाइन इंडस्ट्री थी 4-5 साल पहले तक, अब वो थोड़े,
मेरा तो जवाब आपको सिंपल यही है श्रीमान, फिर भी स्पेक्ट्रम के लिए इतने लोग क्यों आते हैं, ईमानदार ऑक्शन में इतनी बोली क्यों लगाते हैं। आपसे मैं फिर पूछ रहा हूँ बहुत सम्मान के साथ कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट बुक में प्रॉफिट क्यों भरा हुआ है। इसलिए मैं भी थोड़ा समझता हूँ, इस तरह के तर्क बहुत चलते हैं, उनको अच्छी सेवा देना चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। कि अगर आपको ये व्यवसाय ठीक नहीं लगता तो आप बाहर जाइए, दूसरे आएंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना, कि आप अच्छी सर्विस देंगे नहीं और नहीं देने का बहाना अपनी कमजोरी नहीं ठीक करेंगे और दूसरे पर आरोप लगाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ,
हिंदी या दूसरी जो भारत की भाषाएँ हैं उसका ध्यान नहीं रखा गया, मुझे जहाँ तक समझ में आया जितना मैंने रिसर्च किया है, कि जैसे आप डिजी लॉकर भी है तो आप लॉग इन करेंगे या रजिस्टर करेंगे तो इंग्लिश में करना होगा, या फिर ये जो जनधन योजना में बैंक की जो आप से जुड़ेंगे तब भी इंग्लिश में फॉर्म भरना पड़ता है, तो जो इंग्लिश नहीं जानते हैं तो उनके लिए।
देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आज हम लोगों को मैसेज मैथिली में भी देते हैं, भारत की सारी भाषाओं में देते हैं, आप जाइए मोबाइल पर देखेंगे आपकी लाइन व्यस्त है तो हिंदी में भी आएगी, मराठी में भी आएगी, गुजराती में भी आएगी, और मंत्री बनने के बाद से भारतीय भाषाओं में अधिक से अधिक चीज़ें आएँ, इसका मैंने विशेष प्रयास किया है। तो आप देखेंगे ये सेवाएं जब शुरू होंगी तो स्वयं हिंदी में उसका उपयोग बढ़ेगा। सेवाओं को शुरू होने दीजिए, हिंदी और बाकी भाषाएं अपने आप सेवाओं के साथ चलेंगी।
इसका है प्रोविजन है,
प्रावधान क्यों नहीं है?
क्योंकि अभी तक हमने कहीं देखा नहीं कि इसका।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कंप्यूटर आया, अंग्रेजी में आया, आज सारे फॉन्ट हिंदी में है ना, देश की 2200 भाषाओं में उसके किट्स बन गए हैं, मैं उसको करवाता हूँ डिस्ट्रीब्यूट। आज SMS हिंदी में आते हैं कि नहीं आते हैं, गुजराती में आते हैं कि नहीं, पंजाबी में आते हैं? क्योंकि सारे सर्विस प्रोवाइडर ये समझेंगे कि जनता के बीच में जाना है तो स्थानीय भाषाओं में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसका रास्ता निकल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, अच्छा निकलेगा।
हमने पिछले 50-60 सालों में देखा है कि अच्छे प्रोग्राम ज़रूर आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में एक बाधा ज़रूर आती है।
आपने बहुत सही कहा, इसीलिए तो हम लोग सरकार में आए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 26 मई 2014 के बाद हिंदुस्तान अलग है। जहाँ आपसे संचार भवन में बात कर रहा हूँ, यहाँ कितना भ्रष्टाचार होता था, आज आप 1 घंटे से बैठे हैं, आपको एक बिचौलिया दिखाई पड़ा है क्या? देखिए, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया तो 1,10,000 करोड़ की ईमानदार राशि आई, जिसमें सब कुछ कहीं पर किसी ने कोई शंका नहीं जाहिर की, वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया। तो होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ये बता रहे थे कि डिजिटल इंडिया अभियान किस तरह से भारत के लोगों की ज़िंदगी बदलेगा। उनसे बातचीत की हमारे साथी ज़ुबैर अहमद ने। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब सुनते हैं खेल समाचार। खेल समाचारों के साथ आदेश कुमार गुप्त जी आ चुके हैं स्टूडियो में। बताइए आदेश जी, आज के खेल समाचारों के बारे में।
जी निखिल, सबसे पहले तो चर्चा हॉकी की, जहां बेल्जियम में विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से है। ये मुकाबला तीसरे से चौथे स्थान के लिए है और ताज़ा समाचार यह है कि भारतीय हॉकी टीम 2-0 से ब्रिटेन से पिछड़ रही है और आज इस मुकाबले के बाद फाइनल मुकाबला होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया का सामना मेज़बान बेल्जियम से होगा। उधर अगर कोपा कप फुटबॉल टूर्नामेंट की बात की जाए तो चिली ने एक हैरतअंगेज़ परिणाम देते हुए अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से पराजित किया। निर्धारित समय और उसके बाद अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी और उसके बाद लियोनेल मेसी के होते हुए भी चिली ने अर्जेंटीना को मात दी, जो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और चिली ने पहली बार कोपा का फुटबॉल टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। उधर कैंडी में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज मैच के तीसरे दिन स्टंप के समय श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 228 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर अब उसके पास कुल मिलाकर 291 रनों की बढ़त है। श्रीलंका की दूसरी पारी में कप्तान एंजेलो मैथ्यूज़ 75 रन बनाकर अभी भी नाबाद हैं। उनके अलावा जेहान मुबारक ने 35 रनों की पारी खेली। दिनेश चांदीमल फिलहाल विकेट पर हैं कप्तान एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ, उन्होंने 39 रनों का योगदान दिया। अगर पाकिस्तानी टीम की गेंदबाजी की बात की जाए तो यासिर शाह ने 70 रन देकर 2 विकेट लिए, राहत अली ने भी 58 रन देकर 2 विकेट लिए और जबकि इससे पहले पाकिस्तान की पहली पारी 215 रन पर समाप्त हुई थी और बांग्लादेश के धमिका प्रसाद ने 78 रन देकर 3 और नुआन प्रदीप ने 29 रन देकर 3 विकेट लिए थे। और बस एक बात और बता दें कि विंबलडन में आज विश्राम का दिन है।
बहुत शुक्रिया आदेश जी खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में चलते चलते सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
कर्ज संकट से जूझ रहे ग्रीस में आर्थिक बेलआउट पैकेज को स्वीकार करने या ठुकराने के सवाल पर जनमत संग्रह के लिए भारी मतदान हो रहा है। ग्रीस की वामपंथी सरकार बेलआउट में वित्तीय अनुशासन की शर्तों को बेहद कड़ा मानती है, जबकि यूरोपीय संघ उसमें रियायत देने को राजी नहीं है। टूरिस्ट रिजॉर्ट पर चरमपंथी हमलावर की गोलीबारी में 38 लोगों की मौत के बाद ट्यूनिशिया की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। नाइजीरिया में पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पूर्वी शहर पोटिस्कम में एक चर्च पर हुए आत्मघाती हमले में तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई है। एक इवांजेलिकल चर्च में हुए इस हमले में चर्च के पादरी की भी मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिनभर में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी घटना चक्र में रात 9:30 बजे। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष ने, पूरी टीम के साथ निखिल रंजन को दी अनुमति। नमस्कार।